दिनकर जी आरवी के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। जैसा तुम चाहोगी वही होगा। कहिए बेटा, आपने हमारी बात सुनी? हम आपको सुनना चाहते हैं। आरवी बुत्सी बनी खड़ी थी, शांति जी, अनिकेत जी और दिनकर जी की। क्या उसने सुजाता जी की भी सारी बातें सुनी? पर वो चुप थी। शांति जी के कहने पर वो उनकी ओर देखती है, बोलती कुछ नहीं। जहां सब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, वहां उसकी चुप्पी सबको डरा रही थी। अयांश पर क्या बीत रही थी इस वक्त, वो तो दिखा भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था उसकी माँ से जो हुआ उसकी सजा उसे मिलेगी। उसे क्या, वहां मौजूद हर शख्स को ऐसा लग रहा था, और वे चाह रहे थे ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती ना थी, अयांश की तो बिल्कुल नहीं। अब बारी आरवी के फैसले की थी, उसके बोलने की। विनीत ने अयांश की बाह पर हाथ रखा। अयांश ने विनीत की ओर देखा, आंखें हल्की नम, घबराया सा। वो बोल नहीं रही, धीरे से बड़बड़ाया और फिर आरवी की ओर देखा। आरवी की खामोशी न टूटी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट गई। अयांश से उसकी ये हालत बर्दाश्त न हुई। वो उसके पास आने को हुआ कि सुजाता जी फिर आरवी की कलाई थाम लेती हैं। चुप है ये, ठेस पहुंची है माँ इसे। कौन लड़की अपने माँ बाप को मारने वालों के साथ रहना पसंद करेगी? ये सुन अयांश के कदम जम गए उसी जगह और सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। खामोश है, जब आप खामोशी को ही समझ लीजिए, आरवी यहां पर नहीं रहेगी। हम लेकर जाएंगे इसको यहां से। एक फैसला आपने लिया माँ, सब जानकर आरवी को इन लोगों को सौंपने का। एक फैसला अब हम लेते हैं, सब जानकर आरवी को यहां नहीं छोड़ने वाले। चाची हूं, माँ ना सही, पर पाला तो मैंने भी इसे। चल आरवी। इतना कह वो आरवी को अपने साथ ले जाने लगी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करें। अयांश, आरवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नजरों से नजरें मिली, एक की आंखें बरस रही थी, एक की आंखें तड़प रही थी। आरवी अयांश के सामने से होकर सुजाता जी के साथ बस चली जा रही थी कि तभी अयांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरवी के कदम रुक गए। सुजाता जी आरवी की ओर देख अयांश की ओर देखती हैं। हाथ छोड़ो आरवी का, अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अयांश ने उन्हें गुस्से से देखा, तभी आरवी रो पड़ी और दोनों से हाथ छुड़ाकर रोते बिलखते दौड़ी ऊपर चली गई। अयांश क्या, सब बेबस से बस उसे जाते देखते रह गए। आरवी को रोते हुए रूम में जाते देख अयांश भी ऊपर जाने लगा कि शांति जी बोल पड़ी, अयांश अभी उसे अकेला छोड़ दो बेटा, कोई अभी उसके पास ना जाए तो बेहतर है, उसे खुद ही समझने दो, संभलने दो, चिंता मत करो, थोड़ा वक्त दो बेटा आरवी को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि सुजाता जी बोल पड़ी, ठीक तभी होगा माँ जब आरवी यहां से अयांश को घूरते से जाएगी। ये सुनते ही अयांश का जबड़ा कस गया, वो दांतों को पीसते कुछ कहने को हुआ। विनीत ने उसकी बाह पर हाथ रख उसे रोक दिया। अयांश ने विनीत की तरफ देखा तो विनीत उसे नामे सिर हिलाते इशारों इशारों में कुछ ना कहो कह रहा था। अभी कुछ भी बोलने का फायदा नहीं, अयांश समझ गया विनीत चाची जी से बात ना करने को कह रहा है। अयांश फिर सुजाता जी से तो कुछ नहीं बोला, पर वो अभी के पास चला आया और ऊपर की ओर देखते हुए आरवी के बारे में सोचते परेशानी भरे लहजे में अभी से बोला, आरवी को जरूरत है तुम्हारी, तुम उसके पास जाओ, उसको अकेला मत छोड़ना, बहुत तकलीफ में है वो। बस इतना ही कह पाया अयांश और उसके कदम ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय मेहरा सदन के बाहर की तरफ बढ़ गए, वो वहां से चला गया। सब उसको बाहर जाते हुए देखते हैं। विनीत, अयांश, कहते पीछे दौड़ा और जाते जाते वो भी अभी से कह गया, अभिनव आरवी का ख्याल रखना। अयांश क्या, विनीत भी भली भांति जानता था एक अभी है जो आरवी को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, वो दोस्त जो ठहरा आरवी का सबसे अच्छा दोस्त, और जब किसी के पास अभी के जैसा दोस्त हो तो कैसे कोई अकेला पड़ सकता है, आरवी तो बिल्कुल नहीं। जहां अयांश उससे बेहद मोहब्बत करता है तो वहां अभी भी तो आरवी से बहुत प्यार करता है, उसे भी तो आरवी की अयांश जितनी ही परवाह फिक्र है, और इस बात में कोई दोहराई नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जीवन में जब दुनिया मोहब्बत के बीच आ जाती है, दोस्ती के बीच में नहीं आती, मोहब्बत को रोक देती है और दोस्ती को नहीं रोकती, और आज मेहरा सदन में यही तो हुआ था। अयांश को आरवी के पास जाने से रोक दिया गया था, अभी को नहीं, वो दौड़कर चला गया उसी पल ही ऊपर आरवी के पास, और आज तो अयांश भी बीच नहीं आया आरवी अभी की दोस्ती के, वो खुद अभी को आरवी की ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर वहां से चला गया था। और वो क्यों, कहां चला गया था, ये बात फिलहाल कोई नहीं जानता था। विनीत ने आयांश को रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं रुका, ना ही उसने कुछ भी सुना, बल्कि गुस्से में गाड़ी में बैठ वो मेहरा सदन से चला गया। विनीत भी दूसरी गाड़ी लेकर आयांश के पीछे पीछे चल दिया। अब ये आयांश कहाँ जा रहा है? आरवी को अकेला छोड़ना तो समझ आ गया, क्योंकि वो अकेली रहेगी तो अच्छे से सोच समझ पाएगी उसे क्या करना है, क्या फैसला लेना है, और हम सब जानते हैं वो जो फैसला लेगी वो सही होगा। आयांश के साथ गलत वो कर ही नहीं सकती, सब ठीक होगा, पर आयांश अभी उसका अकेला रहना ठीक नहीं, गुस्से में है और आरवी से दूर भी तकलीफ में भी है, कुछ और बुरा ना कर ले अपने साथ। वैसे भी गुस्से में इसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, फिर क्या कुछ कर जाए, कहां भी तो नहीं जा सकता। गाड़ी भी देखो, चलाने की जगह उड़ाए जा रहा है, स्पीड तो कम रखो आयांश। इधर विनीत आयांश की गाड़ी का पीछा कर रहा था, जो बेहद गुस्से में ड्राइव कर रहा था, आंखें गुस्से से लाल, भौहें और हाथों की नसें पूरी तनी हुई। वो दांतों को पीसते बार बार गाड़ी के स्टेयरिंग पर अपना हाथ पटक रहा था। उधर आरवी रूम में आते ही अपने मम्मी पापा की फोटो अलमारी से निकाल लेती है और उसे सीने से लगाकर रोते हुए वहीं अलमारी के पास जमीन पर ही बैठ जाती है और रोती रहती है। अभी रूम में आते ही उसके पास आकर बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आरवी के सिर को सहलाते वो उसे संभालने लगा, जो अपने पेरेंट्स को याद कर रोए ही जा रही। पेरेंट्स की फोटो को आरवी एक पल भी खुद से जुदा नहीं कर रही थी आज। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके मम्मी पापा की फोटो नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा ही हों, जिनको उसने हक कर रखा हो, और अब उनसे दूर होना उसे एक पल के लिए भी गवारा ना हो। आरवी की ऐसी हालत देखकर अभी की भी पलकें भीग उठी। आयांश ने एक ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहां आसपास कोई न था, एकदम शांत खाली जगह। आसपास चारों ओर बस बड़े बड़े पेड़ थे। आयांश गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के आगे जा खड़ा हुआ, आंखों को कसकर बंद कर लिया और हाथों की मुट्ठियां भी बांध ली। बस उसी पल ही एक दृश्य उसकी बंद आंखों के सामने चलचित्र की भांति चल पड़ा।
मॉम 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 मॉम
प्लीज प्लीज मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ, मॉम मेरे साथ रहो,
मॉम मॉम मॉम।
छोटा सा आयांश रोते बिलखते अनामिका की ओर अपना हाथ बढ़ाए उसकी ओर बढ़े जा रहा था, जो उससे अपना हाथ छुड़ाकर उल्टे कदमों से उससे दूर चली जा रही थी। जो जो आयांश अपनी मॉम की ओर बढ़ रहा था त्यों त्यों अनामिका उससे दूर जा रही थी। ये देख वो तड़प रहा था, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए बेचैन हो रहा था, उसके पास जाने के लिए बेताब हो रहा था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। वो अनामिका को छू तक न पा रहा था, अनामिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आयांश के रुक जाओ मॉम बार बार रिक्वेस्ट करने पर अनामिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख आयांश हैरान भी हो रहा था, डर रहा था, उसका रोना और ज्यादा निकल रहा था। जो मॉम एक बार आवाज देने पर उसके पास चली आती है, रोता हूं तो खुद रो पड़ती है, पर आज वो ना उसे चुप करवा रही थी, ना ही पास आकर अपने गले से लगा रही थी, ना ही उससे प्यार कर रही थी, रोज जैसा कुछ भी नहीं था। तभी अनामिका आयांश के सामने से गायब हो गई और वो जोर से चिल्ला उठा, मॉम।
कि तभी विनीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयांश, विनीत भी वहां आ गया था। विनीत का छूना और आवाज देना आयांश को उस दृश्य से बाहर खींच लाया। क्रमशः